તારીખ 9/6/1996 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 833 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત સત્ર 833માં ચાલતા હૈ. पेज पर आखिर का पैराग्राफ है. भ्रांति कैसे होती है जीव को. चंद्र भूमि को प्रकाशता है, उसके किरण की कांति के प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत हो जाती है. आकाश में पूर्णिमा का चंद्र होता है, उसका किरण की तेज से सारी पृथ्वी श्वेत दिखती है. परंतु चंद्र किसी अंश में भूमि रूप किसी काल में नहीं होता है. चंद्र चंद्र रहता है, पृथ्वी पृथ्वी रहती है, भूमि भूमि रहती है. भूमि पर जो प्रकाश आता है उससे उसका एक दिखाव बदल जाता है, फिर भी चंद्र और पृथ्वी दोनों अलग अलग है, वो वैसा के वैसे रहते हैं. उस प्रकार होते हैं, उस प्रकार समस्त विश्व को का प्रकाशक ऐसा यह आत्मा वो क्यारे भी विश्व रूप नहीं होता. सारे विश्व को प्रकाश करने वाला यानी जानने वाला, सारा विश्व का अस्तित्व बताने वाला, क्योंकि जड़ पदार्थ को पता नहीं है कि हम हैं या हम नहीं है या हम कैसे हैं, वो तो आत्मा ही उसका प्रकाशक है. सारे विश्व को जानता है, फिर भी विश्व विश्व रहता है, आत्मा आत्मा रहता है. सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है. विश्व जड़ है, सारा विश्व है वो जड़ है, और आत्मा सदा चैतन्य रूप ही रहता है. विश्व के पदार्थ का प्रतिबिंब चैतन्य में आता है, लेकिन अपने अपने स्थान में है. जैसे कोई किसी का फोटो खींचता है, जिसका फोटो खींचता है पता उसको तो पता ही नहीं चलता कि मेरा फोटो खींचा है या नहीं खींचा है. ऐसे विश्व को पता नहीं है, फिर भी आत्मा को पता है कि विश्व कैसा है, क्योंकि आत्मा में विश्व झलकता है. फिर भी आत्मा चैतन्य स्वरूप ही रहता है. आत्मा की अवस्था में विश्व झलकता है, इसलिए आत्मा में कुछ होता है तो बात नहीं है. सारे विश्व का प्रतिबिंब होने के बावजूद भी आत्मा वैसा का वैसा सदा ही चैतन्य रूप रहता है. विश्व का किसी भी अंश में आत्मा में आना नहीं होता. लेकिन ऐसा होने से आत्मा की अवस्था में दर्पणवत विश्व का प्रतिबिंब होने से, और आत्मा उसको जानता हो जानता है, इसलिए उस विश्व में जीव अभेदता मानता है। जैसे मेरे में कुछ आया या मेरे में कुछ असर पहुंची, ऐसा जो मानता है यही जीव की भ्रांति है। वास्तव में आत्मा को सर्वथा भिन्नता रहती है, जानने के कारण से कोई असर नहीं आती। कोई भी असर जानने के कारण से नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जानने से कुछ हुआ, जाना तो अच्छा लगा या बुरा लगा, नहीं जाना तो अच्छा बुरा नहीं लगता। ऐसा जो समझ में आता है वो भ्रांति है। ऐसा होता है परिणमन में, वो भ्रांति होती है। जानने से कुछ नहीं हुआ है, जाना और कुछ कल्पना किया इसलिए हुआ है, उतनी सी बात है। क्या परिस्थिति है, एक और दृष्टांत लेते हैं कि जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं, पूरे आकाश में विश्व है ऐसा, विश्व कहाँ अवगाहन, विश्व का अवगाहन कहाँ है, आकाश में, फिर भी आकाश और विश्व को कुछ लेना देना नहीं है, यानी आकाश निर्लेप है, विश्व में अनेक प्रक्रिया भजती है, एक साथ असंख्य बनाव बनते हैं और सारा विश्व आकाश में स्थान को प्राप्त किया है। किसी भी बनाव से आकाश को क्या लेना देना, आकाश हमेशा निर्लेप रहा। सर्वभाव की वासना से आकाश रहती है, यानी जड़ चेतन के सभी भाव की कोई असर आकाश में नहीं आती। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्वद्रव्य से भिन्न सर्व अन्य पर्याय से रहित ही आत्मा देखा है। सम्यक दृष्टि पुरुषों ने देखा है, दूसरे लोग तो भ्रांति में आ जाते हैं कि हमारे में कुछ होता है, हमने जाना नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जान लिया तो हो गया। गुजराती में कहावत है, જોયાનું ઝેર છે, દેખને સે અસર આ જાતી હૈ, એ ભ્રાંતિ હૈ જીવ કી। વાસ્તવ મેં કલ્પના કિયા હૈ ઓર કુછ નહીં હુઆ હૈ, કલ્પના કિયા હૈ ઓર કુછ નહીં હુઆ હૈ। बहुत मंथन करने योग्य ये विषय है। जब जब हमारे प्रत्यक्ष देखने से हमको कुछ न कुछ अच्छा बुरा लगे, उस वक्त हमें हमारे अनुभव को देखना है कि हमने सिर्फ देखा, इसके सिवा आगे हमने ऐसी कैसी कल्पना कर ली कि हमको राग या द्वेष या आकुलता होती है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात उदय के काल में जब जब भी राग द्वेष होए तब तब मंथन करने योग्य विषय है। यहाँ तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरुषों ने, पुरुष नवात्मा, चाहे वो सम्यक दृष्टि स्त्री हो सकती है, नपुंसक भी हो सकता है, पुरुष मैंने पुरुष ऐसी बात नहीं है, जो भी सम्यक दृष्टि आत्मा है उन्होंने सर्वद्रव्य से और सर्व अन्य द्रव्यों की पर्याय से भिन्न रही थी अपना आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष भिन्न है ऐसा देखा है, भिन्न देखा है नहीं, प्रत्यक्ष भिन्न है ऐसा देखा है। इसलिए भिन्न देखने वाले को कुछ असर पहुंचती नहीं है, अस्थिरता के वश कुछ असर दिखने में आती है, वो उसकी कोई गिनती नहीं, वास्तव में असर नहीं पहुंचती है। अब कहते हैं कि जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्य से नहीं होती है, ऐसा आत्मा का नाश भी कहाँ से होगा, कहाँ से हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका नाश भी कहाँ से हो। हमारी आत्मा विश्व का एक निरालंब निरपेक्ष पदार्थ है, जिसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है। आकाश में सूर्य चंद्र है, गति करते हैं सुबह से शाम, इधर से उधर, असंख्य योजन के सफर करते हैं, कितने, इनको कोई रास्ता का आधार है क्या? हम चलते हैं कोई रास्ते पे चलते हैं, हमारी गाड़ी चलती है कोई सड़क पे चलती है, ऊपर सूर्य चंद्र को कोई आधार है क्या? और जब देखो तब स्थिर दिखेगा, है गति में, लेकिन इतना दूर होने से कैसे देखेगा, दिखेगा अधर लटकेला देखा इसे, लटकता हुआ, ऊपर नीचे कोई आधार नहीं है, न ऊपर से कोई पकड़ा हुआ है, न नीचे से कोई झेला हुआ है। ठीक इस विश्व में हमारे आत्मा ऐसा ही है, किसी का आधार से नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, देह का आधार है, देह से चलते हैं, देह से बैठते हैं, देह से सोते हैं, लेकिन देह छूटता छूट जाता है, तब कहेंगे कि वो सफर करते हैं तो भी देह को लेकर के ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी में, पैदल कुछ भी चलते हैं, लेकिन देह छूट जाता है तब असंख्य योजन बिना शरीर या आत्मा सफर एक समय या दो समय में कर लेता है, एक दो समय में कर लेता है, बहुत सूक्ष्म काल। गति शक्ति है उसमें, आत्मा में क्रियावती नाम की शक्ति है, उद्गल में भी है। एक समय में 14 ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे चला जाए, नीचे से ऊपर चला जाए, एक ही समय लगे, दूसरा समय नहीं लगे। जिस समय में नीचे हैं उस समय में सभी मध्य के आकाश के प्रदेश में, उसी समय में ऊपर, सभी एक ही समय में, इतनी तेज गति है, किसी की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्हीकल वाहन की जरूरत नहीं है तो व्हीकल के लिए फ्यूल है उसकी भी जरूरत नहीं है, बात खत्म। हमारी आत्मा भी निरालंब निरपेक्ष है, किसी का अवलंबन लेती नहीं है। कहाँ थे, कहाँ चले गए, कहाँ आ गए, किस कोई आधार नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति और नाश भी नहीं है। अज्ञान से और स्वस्वरूप प्रति के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। क्या है? अज्ञान से और स्वस्वरूप प्रति का प्रमाद से, यानी अपना स्वरूप को जाना नहीं और अपने स्वरूप में एकत्व भाव से अनुभव करने का प्रयास पुरुषार्थ किया नहीं, वो प्रमाद है। प्रमाद मैंने अन्य कार्य में लगा रहा, उस कारण से आत्मानुभव नहीं हुआ, और आत्मानुभव नहीं हुआ तो मृत्यु की भ्रांति तो रहेगी, मृत्यु का भय रहेगा, डर लगेगा। आज सुख शांति की बात तो आप लोगों ने सुनी, कैसी लगी? अल्टीमेटली ये बात, ऐसी बातें सभी संप्रदाय में है। बेसिक डिफरेंस वो है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें फर्क है। इसलिए मानसिक शांति होती है, आत्म शांति नहीं होती। ध्यान का कमरा तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो कमरा में बैठने से वो कमरा आत्म शांति दे सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वो शांति कमरे में से नहीं आती, भले कमरा का जो भी स्ट्रक्चर है वो बढ़िया हो। प्रवेश द्वार साइड में से है, सामने
मेरा जो गाइड था ना भाई श्री, वो एंड पे मेरे को पूछने लगा था आपका चैन दर्शन के बारे में, जो जानने का तत्पर था, दो बार तीन बार पूछा था कौन सी पोजिशन में ध्यान करते हैं, कैसे बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो कह रहे दर्शन ज्ञान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, इसके बाद चारित्र में ध्यान होता है। तो ये लोग पहले से ध्यान में जाते हैं।
आत्मा में आत्म शांति, परम शांति, अमृतमयी शांति स्वभाव से भरी है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट उस प्रकार का है कि हम एकांत स्थल में जहाँ कोई आवाज नहीं हो, कोई प्रवृत्ति नहीं हो, वहाँ स्थिर होकर के सभी प्रकार के पंचेंद्रिय के कार्य को बंद करके मन की चंचलता हटाने के लिए किसी एक चीज को, मैंने ईश्वर को या बाबा को या किसी को लक्ष्य में लेकर के बैठ जाए और मन की चंचलता घटे तो शांति मिल गई। आत्मा में शांति भरी है, वो आत्म ध्यान से अनुभव में आती है, कॉन्सेप्ट नहीं। और उसका साइंस भी वहाँ, उसका विज्ञान भी वहाँ नहीं। इसलिए शांति चाहिए, लेकिन कौन सी शांति, मानसिक शांति या आत्म शांति, वो डिफरेंस भी उन लोगों के ख्याल में नहीं है। लेकिन कुछ मानसिक शांति मिलने से वो लोग संतुष्ट हैं, और उतना करने के लिए इतना बड़ा वो किया है। मानसिक शांति मिले इसलिए ये सब उतना परिश्रम किया है। उसको क्या से कहाँ से विचार आया, अज्ञान से मृत्यु की भ्रांति जाती नहीं, तो दाढ़ी वाले सिख भाई थे ना, वो उसने वो समझाया कि आत्मा जब देह से छूटता है, लोग जिसको मृत्यु कहते हैं, फिर वो जाता है कहीं बाहर, एक दफे परमात्मा को मिल के फिर वापस आता है। जब साइंस पूरा नहीं है तब कुछ न कुछ कल्पनाएं हो जाया करती हैं। कल्पना से तो आत्म शांति मिलने वाली नहीं है।
बच्चे को माध्यम की जरूरत है, सीधू जम के डायरेक्ट प्रजा पिता साथे
बच्चे माध्यम ने जरूर नहीं, तो आ हॉल अने आ समझावनारा ए पण बच्चे न जोईए। तो सत्यमल कहते थे कि दिनों के हाथ में सब कारोबार है, किसी के लोगों के हाथ में, बहनों के हाथ में, भाइयों के हाथ में होता तो ये नहीं चलता इतना, एक वो कारण। और दिनों में सैक्रिफाइस करना, प्रेम से व्यवहार करना उनके प्रकृति होता है, वो व्यवहार बहुत बढ़िया दिखता है। थोड़ा कठोर है, उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा, व्यवहार से बढ़िया दिखावाया है, उसमें कोई शक नहीं। एक प्लस पॉइंट और भी था, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें किसी का नाम नहीं है। सब अपने सेंटर में रोजाना 1 रुपया दे देता है और किसी को ज्यादा देना है, संपन्न है तो वो भी भंडार डाल देगा। किसी का भी कहीं एडवर्टाइज नहीं होता है। इसे इस प्रकार का अहम भाव किसी को आता सवाल नहीं कि हम तो समर्पित करते हैं जिसमें हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, उनको हम समर्पित कर रहे हैं। समर्पण में आम्बा होने का सवाल नहीं रहता। हाँ, सभी सेंटर में पैसा इकट्ठा होता है और उसकी बचत जो है वहाँ तो मेंटेन करना पड़ता है। सेंटर को मेंटेन करने के बाद जो बचत रहती है वो इधर आ जाती है और ऐसे 4,500 सेंटर से बचत आती है। तो यहाँ पैसे भी बहुत आ रहा है, डेवलपमेंट बहुत दिया हुआ है। वो कर्म के चेहरे को नहीं जानते। कर्म का विज्ञान जैन दर्शन के अलावा कहीं और किसी भी संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म है कि वो केवल ज्ञान गोचर है। छद्म तक तो ज्ञान गोचर नहीं है तो उन लोगों को कहाँ से समझ में आएगा कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, वो उन लोगों की समझ में नहीं आएगा। उस नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए हम लोग अधिक भाग्यशाली हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम कहीं भी ब्लाइंड फेथ में नहीं आ सकते। ऐसा मान लो ऐसा नहीं, सबके पीछे न्याय है, गणित है, साइंस है, सब बात के पीछे एक व्यवस्थित समय है और पूरा समझदारी का मार्ग है। ज्ञान से और स्वस्वरूप प्रति के प्रमाद से आत्मा को मात्र मृत्यु की भ्रांति है। कुछ नहीं है मृत्यु जैसा, वो तो मात्र भ्रांति है। क्या है ये जो सबसे बड़ा प्रसंग माना जाता है मृत्यु, किसी के घर में भी ये प्रसंग बनता है तो सबसे बड़ा प्रसंग माना जाता है। यहाँ कितना हल्का कर दिया उस मात भ्रांति है, मृत्यु जैसी कोई चीज, वो आत्मा और जितना स्थान ग्रहण कर रहा है अपने पूर्व कर्म के अनुसार और आगे अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, बस उसका अस्तित्व नाबूद नहीं हो रहा, वो है यहां भी वहां है। इसकी चिंता हमारा लड़का अमेरिका है तो है इसकी क्या चिंता, साथ में लेकर 24 घंटा थोड़ी न पड़ते। हमारी पूंजी है, भले ही उगाई में हो या भले ही गोडाउन में माल के रूप में हो, मिलकत के रूप में हो, लेकिन है इसकी चिंता नहीं होती। तो नहीं है इसकी चिंता है, इसलिए श्रद्धा का विषय केवल निज अस्तित्व है, निज सत्ता का ग्रहण करती है सत्ता, बस खत्म। कोई चिंता नहीं, सम्यक दृष्टि को कोई चिंता नहीं होती। यही भ्रांति को निवृत्त करके मैंने यही भ्रांति का नाश करके सूर्य चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में पर जागृत होकर के ज्ञानी सदा निर्भय है। क्या वचनामत है, इस भ्रांति को नाश करके ज्ञानी आत्मा में जागृत होकर के निर्भय है, इतना नहीं बोला साथ से, सीधी सादी बात नहीं था। उस भ्रांति को छोड़ करके है आत्मा के अनुभव में आता है, उसमें उसका प्रमाण ज्ञान होता है। वो प्रमाण ज्ञान कैसा, अनुभव प्रमाण, पांच प्रकार के प्रमाण हैं, पांच प्रकार के प्रमाण हैं। आगम प्रमाण, आगम में कहा वो बराबर, न्याय प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तर्क प्रमाण, ऐसे चार प्रमाण तो वो हुए, पांचवा अनुभव प्रमाण। सबसे बलवान प्रमाण कौन सा है, अनुभव प्रमाण। जी
प्रमाण प्रमाण,
हाँ वो चार के बात लिया है, व्यवहार प्रमाण, निश्चय प्रमाण, प्रमाण प्रमाण, मैंने साक्षात्कार में प्रमाण प्रमाण है, साक्षात प्रमाण, साक्षात नापने में आया उतना ही नाप है, प्रमाण मैंने नाप, जितना अनुभव में नापा गया उतना ही नाप है, प्रमाण प्रमाण। टोन बहुत बढ़िया है, बात तो उतनी सीधी सादी कही है कि ज्ञानी निर्भय है। क्या कहना है इस वचन में, कि ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निर्भय है। और जिसको मृत्यु का भय नहीं है उसको और किसी बात का भय होगा, बताइए। सबसे बड़ा भय मृत्यु का रहता है जीव को, ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं है। क्यों, कि जिस भ्रांति से मृत्यु का भय होता है वो भ्रांति का नाश कर दिया है। मैं हूं, मैं शाश्वत हूं, कहीं भी हूं मैं शाश्वत हूं, मेरे लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो अच्छा हो, और मेरे लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अच्छा नहीं हो। मेरे तो सब भूमि गोपाल की, वो ऐसे कैसे हुआ, वो श्री कृष्ण थे ना, वो बचपन में इधर यशोदा के पास आ गया, यशोदा है ना, गोकुल में आ गया, उनके माँ बाप ने छोड़ दिया कि उसके मामा उसको मार डालने वाला था कंस, तो उधर आ गए गोकुल में ले गए। अब गोकुल में वो उतना प्यारा था सबसे बचपन से, कई लोग ऐसे होते हैं सब उनको बहुत प्रेम करते, वो रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण थे, ऐसे दोनों पुरुष ऐसे थे कि जो लोग उनको देखे थोड़ा भी संपर्क करे उसको उससे बहुत प्रेम करे, बहुत प्रेम करे। तो बचपन से गोकुल में वो उतना प्यारा था, उतना प्यारा था, कभी वो किसके घर में हो इसका कोई पता ही नहीं पड़े, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसकी माँ ढूंढती फिरे कि मेरा कन्हैया किधर गया, पता ही नहीं चलता है। तो उनको क्या था कि सब प्रेम करते थे, इसलिए उनको सब जगह कोई जगह ऐसा नहीं लगता था कि मैं, ये मेरा घर नहीं है। उनके लिए तो सब भूमि गोपाल की। बचपन में उसको गोपाल कहते थे, उनके नाम बहुत थे, प्यारा थे ना, तो प्यार में उनका नाम भी बहुत रखा गया है। हैं,
एक हजार नाम
है। अच्छा, श्री कृष्ण के 1000 नाम बोलते हैं। कितने नाम थे। ऐसे ही आत्मा भी श्री कृष्ण चंद्र है। कैसा है? उसको सब भूमि गोपाल की है। विश्व में कहीं भी हो, हमें क्या, आज इधर है कल उधर कहीं भी होंगे, हमें क्या, ये हमारा घर है, हमको हमारे घर में हमको आराम मिलता है, और जगह हमको नहीं अच्छा लगता है, वो बात नहीं है। कहीं भी हो, लोगों की आदत ऐसी है कि जिस जगह सोते हैं, सोने की जगह फिर जाए तो नींद नहीं आवे। परमेश्वर को अपलक्षण का भी पार नहीं है, ऐसी बात है। बाकी क्या रखा है, कहीं भी क्या रखा है, कल्पना में क्यों रखे, कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों रखे कि हम उधर है या उधर है, कहीं भी है, हमारे आत्मा में है। हम कहीं भी है, हमारे आत्मा में है। हर जगह समाधान और हर जगह समाधि, हर जगह समाधान और हर जगह समाधि। जाओ, ज्ञानी सभी प्रकार की भ्रांति को नाश करके अपना जो शुद्ध चैतन्य, वातो जित मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चित्ती स्वरूप कांति, सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है। मैं ज्ञानी शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत है। अनुभव में अपने स्वरूप की सावधानी से अनुभव होता है। सावधानी किस प्रकार से, अनुभव किस प्रकार से होता है, अपने स्वरूप की सावधानी से अनुभव होता है। निज अनुभव प्रमाण स्वरूप है, उसमें परम जागृत मैंने परम सावधान है, तो उसमें अपना शाश्वत स्वरूप का ज्ञान होता है। मैंने ऐसा समझाया कि बाबा को साक्षात्कार हुआ तो जो चार अपना युग है उसका ज्ञान हुआ, सतयुग का ज्ञान हुआ, द्वापर युग का ज्ञान हुआ, त्रेता युग का ज्ञान हुआ और कलयुग का भी ज्ञान हुआ। युग है उन लोगों में, शास्त्र में चार युग है, सतयुग कलयुग दो तो ऐसे हैं और द्वापर और त्रेता, ऐसे चार युग हैं। अपने यहाँ छः आ रहा है, छः आ रहा है, पूरा एक काल का एक माप नाप लिया है, छः आ रहा का युग बोला जाता है। मैंने छः युग बोला है, लोग चार युग लेते हैं। उसका ज्ञान हुआ साक्षात्कार में, हम कहते हैं साक्षात्कार में केवल आत्मा का ही ज्ञान होता है, युग भोग का ज्ञान होने का सवाल, आत्मा का ज्ञान होता है। साक्षात्कार किसका हुआ? आत्मा का हुआ, तो आत्मा का साक्षात्कार में आत्मा का ज्ञान होगा, किसका ज्ञान होगा? या सतयुग का ज्ञान होगा? हाँ, वो बात जरूर है कि चार युग क्या, मेरी आत्मा अनादि अनंत है ऐसा शाश्वत सभी युगों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो आत्मा के स्थिति अनादि अनंत है उसका ज्ञान होता है, वो भी आत्मा का ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान होने से मृत्यु की भ्रांति नहीं रहती, मृत्यु की भ्रांति नहीं रहती। फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? एक स्वप्न है। क्या है? क्या है? एक स्वप्न है। जैसे कोई घटना घटित हुई, जागृत अवस्था में क्या मालूम पड़ता है? कुछ नहीं। वैसे ये जो भाव के सभी प्रसंग जन्म और मरण तक के, और जन्म और मरण सभी प्रसंग, आत्मा दूसरे भाव में स्वप्न मत देखेगा, ये स्वप्न पूरा हो गया, वो मेरा स्वप्न था पूरा हो गया, मैं मरा नहीं, मैं तो हूं। अगर मैं मरा होता तो मैं कहां से होता? इसलिए वो प्रसंग, मृत्यु का प्रसंग बिल्कुल झूठ था। क्या था? जैसा स्वप्न झूठ है वैसा ये भी झूठ है। बनारसीदास ने बहुत अच्छा लिया है, जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न कुछ नहीं है, वैसे स्वरूप के अनुभव में, आत्म जागृति में, ये भव भवांतर कुछ, संसार कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे स्वरूप में संसार का अभाव है, मेरे स्वरूप में संसार का अभाव है। आप मेरे वो है, आप मेरे वो है, इसलिए आपको वैसा करना पड़े चाहिए, क्या बात है? हाँ, ये सब बंधन, संसार के स्वप्न का है। किसका है? संसार के स्वप्न का। आत्मा के भीतर में कोई इसका संबंध नहीं, अभी भी नहीं है। और मृत्यु के बाद अगर किसी को जाति स्मरण होता है और उसके स्मरण में सब बात आती है, तो लगता है कि मृत्यु भी एक स्वप्न था और कुछ नहीं था। और अपने ध्रुव स्वरूप को देखते हुए ये सभी पर्याय स्वप्नवत है, सभी पर्याय, क्योंकि आती है जाती है, आती है जाती है। शुद्ध चैतन्य ध्रुव तत्व को क्या है? कुछ नहीं। मेरे में पर्याय हुई, यही भ्रांति है। मैं पर्याय रहित ध्रुव हूं। कैसा हूं? पर्याय रहित हूं। यही स्वरूप जागृति है। परम जागृत लिया ने, बात तो वहां से चलती है। निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत माने क्या, के पर्याय मात्र से भिन्न है। भिन्न हो तो पर्याय में जो कुछ होवे उसका क्या, के उसका कोई लाभ भी नहीं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश में शोगानी जी ने लिया के पर्याय में निगोद अवस्था हो तो समर्थ से समर्थ दृष्टांत ले लेते हैं, और पर्याय में सिद्ध अवस्था हो, मोक्ष अवस्था हो, मुझे कोई नुकसान भी नहीं और मुझे कोई लाभ भी नहीं। क्यों? कि मेरा ध्रुव स्वरूप वैसा का वैसा, उतना का उतना रहा, मैं तो वैसा का वैसा रहा। ये कुछ हुआ पर्याय में हुआ, मेरे में हुआ नहीं, मुझे लाभ नुकसान कैसा, कुछ नहीं। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी दृष्टि, द्रव दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी बात है, लेकिन ये शांति अशांति, सुख दुख, इसका तो प्रयोजन है, इसका तो प्रयोजन है। और आप कहते हैं कि मेरे में है नहीं, कि प्रयोजन है उसकी सीमा पर्याय से आगे नहीं है। प्रयोजन पर्याय विषय प्रयोजन की सीमा मर्यादा केवल पर्याय तक है। ध्रुव से इसका कोई वास्ता नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूं, ऐसी सत्ता का स्वीकार वो सम्यक दर्शन है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। कोई पर्याय नहीं, मैं ज्ञान दर्शन तक भी नहीं है, कोई पर्याय तक मैं नहीं। स्वीकारती नहीं दृष्टि पर्याय को, स्वीकारती नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसी होती है। तो लिखते हैं कि ये नशा चढ़ता है, ऐसा द्रव दृष्टि का नशा चढ़ जाता है। जैसा नशा चढ़ता है उसको कोई भान नहीं रहता, ऐसे दृष्टि की मस्ती में कोई भान नहीं रहता। जाओ, बहुत तीखा है, बहुत मस्ती में रहते थे, बहुत मस्ती में रहते थे। यही भ्रांति निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण में परम जागृत हो करके स्वरूप का, ध्रुव स्वरूप का अनुभव में जागृत हो करके, स्वरूप के अनुभव में जागृत है, कोई पर्याय में जागृत नहीं है, स्वरूप में जागृत है। ज्ञानी सदा निर्भय है, ज्ञानी को कोई भय होता है, ज्ञानी सदा ही निर्भय है। भय केवल कल्पना से होता था, वो बात समझ में आ गई कि ये सब कल्पना है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना होती है, रस्सी ऐसे पड़ी है, अंधेरे में सांप की कल्पना होती है, बस भय का उतना ही बात है, कहीं भी भय होता है तो बात तो इतनी सी है। क्यों? कि भय होवे ऐसी कोई चीज ही नहीं जगत में, जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो जिसके कारण से भय हो। हमारे यहाँ तो दीवार पे छिपकली देखे तो भय लगता है, है? लगता है कि नहीं लगता है? अपने डेढ़ गरोड़ी कही ऐसी गरोड़ी, हाँ, उसको देखते भय लगता है। हाँ? क्या करती है वो? तो कुछ करती है क्या? किसी ने किसी को काटा इसने? काटा है किसी ने? नहीं काटा। तो मनुष्य को देख करके भगने लगती है। हम मानते हैं कि घर मेरा है, उस बेचारे ने माना कि घर मेरा है। और चींटियां घर में होती है वो मानती है कि घर मेरा है, मक्खियां आती है वो मानती है कि ये घर मेरा है, और छिपकली मानती है कि घर मेरा है, और चूहा बुआ होता है तो वो मानता है कि वो घर मेरा है। बाहर में कुत्ता रहता है घर में नहीं आता है तो मानता है कि इसका रक्षण मेरे जिम्मे है, घर मेरा है। जीव केवल कल्पना करता है, घर वहां का वहां रह जाता है, खुद चला जाता है, जैसे मुसाफिर चला जाता है। ममत्व करके दुखी हुआ, वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। घर क्या, ऐसे व्यक्ति में कल्पना करता है, ये मेरे फलाना है, मेरा लड़का है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरा माँ बाप है, वो है वो है। ये बात किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, कोई किसी का होता कुछ होता नहीं है, कोई किसी का कुछ होता ही नहीं है, केवल कल्पना और कुछ नहीं है। कल्पना होती अधिकार जमाना हो जाता है। बाप का बेटे पर, बेटे का बाप के संपत्ति पर, बाप पर मैंने बाप के संपत्ति पर। कल्पना से अपनत्व करते हैं, ममत्व करते हैं और अधिकार जमा लेते हैं, और द्रव्य स्वतंत्र है। अपनी इच्छा अनुसार चलते नहीं तो और दुख होता है। ऐसे दुख की परंपरा कल्पना के कारण से होती है। ये सभी प्रकार की कल्पना जीव के परिणाम का विपर्यास और विषमता है, और इसका फल केवल दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। फिर घर में रहने कैसा, घर में कैसे रहना, अपने साधन में जान करके रहना, कैसे जानना? घर में जो भी सभ्य से हमारे साधर्मी है उनका साधर्मिक का साधर्मी सा वात्सल्य कर लो, प्रेम करो तो साधर्मी प्रेम वात्सल्य प्रेम करो, बस कोई दुख होगा। अधिकार से तो गड़बड़ होगी होगी, यही स्वरूप के लक्ष्य से, ऐसा स्वरूप के लक्ष्य से, ध्रुव स्वरूप के लक्ष्य से, मूल स्वरूप के आत्म स्वरूप के लक्ष्य से सभी जीव के प्रति साम्य भाव होता है। जैसा भीतर में मेरा स्वरूप है वैसा ही समूह का स्वरूप है। जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब हैं। मेरे परमात्मा की कृपा मेरी अवस्था पर हुई क्या? मेरे परमात्मा की कृपा अवस्था पर हुई तो वो अवस्था है, उसमें दुख तत्व का नाश हो गया। मेरे में तो था ही नहीं पहले से, अवस्था में था वो, उसका नाश हो गया। अब आप लोगों के परमात्मा की कृपा आप लोगों के अवस्था पर होने वाली है तो उनका भी नाश हो जाएगा। चलो रुकनी चाहिए ने, वो परमात्मा की कृपा से होता है, निज परमात्मा की कृपा होती है, वो कारण परमात्मा है। क्या है वो? कारण परमात्मा है और अनंत कृपा का सागर है वो, रुकता नहीं है कभी। हमने पर्याय मां अहम भाव करके अपने स्वरूप की ओर देखा नहीं, फिर भी वो नाश वो रूठा नहीं, उसने कभी बुरा माना। वो हमारे दरवाजा को खटखटाता रहा, दरवाजा खोल तो तुमको दर्शन परमात्मा का हो जाएगा। हम सुनते नहीं थे, जिस दिन सुनेंगे उस दिन परम किवाड़ खोल करके परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कितनी करुणा देखो, हमने अनादर किया, माना नहीं तुम है ही नहीं, ऐसे भाव किया कि तुम है ही नहीं, नास्तिक होकर के बैठ गए। वो भी वो खिसका नहीं दरवाजे से, खटखटाता ही रहा। छोरू कछोरू होता है, माँ बाप कछोरू नहीं होते। बोला कि बच्चा है, नादान है तो ऐसा बोलता है कि तुम नहीं है। वो तो पिता पिता करते हैं ना, ब्रह्मा को गॉड पिता कहते हैं। पर्याय तो बच्चा है इसका, वो नादान हो सकता है, माँ बाप नादान होते हैं नहीं है। वो दर्शन देने के लिए हमेशा खड़ा है, ऐसा अनंत करुणा का सागर है। कितनी करुणा है? अनंत 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 करुणा है। इसकी करुणा समझ में आ जाएगी तो फिर पर्याय की कठोरता रहेगी। ऐसे ही स्वरूप के लक्ष्य से सभी जीव के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है और सर्व परद्रव्य से वृत्ति व्यावृत होकर के आत्मा और क्लेश समाधि को प्राप्त करता है। फिर सब सर्व परद्रव्य से वृत्ति छूट जाती है, व्यावृत होती है माने छूट जाती है। मुझे कोई परद्रव्य से कुछ लाभ नुकसान, कुछ शांति अशांति, कुछ संबंधी नहीं, और जब ये संबंध छूट जाता है तो उपाधि मिट जाती है और आत्मा अक्लेश मैंने शांत समाधि को प्राप्त होता है। ऐसे इस वचनों में ज्ञानी पुरुष की दशा का वर्णन किया है कि ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञानी के भीतर में क्या होता है और ज्ञानी नहीं थे तब तक क्या परिस्थिति रही। एक चार पंक्ति में, साढ़े तीन पंक्ति में कितनी बातें भरी है। सामर्थ है कृपाल देव का, ये सामर्थ है, बहुत कम शब्द में बहुत गहरी गहरी बातों उन्होंने कही है। आगे का जो विषय है कल के स्वाध्याय में।